हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग कृषा के साथ मौजूद था। हमले के बाद वो डर गई थी और मानव से बात करने के बाद उसने युग को बताया कि अक्सर पास्ट में हुई बुरी घटना को याद करने के बाद ये सब महसूस करना नॉर्मल था। युग अच्छे से जानता था कि कृषा कौन सी घटना को याद करके इतना डर गई होगी। उसी घटना के चलते उसने अपनी मॉम छाया को खोया था। अचानक ही युग के दिमाग में छाया से जुड़ी हुई यादें ताज़ा हो गईं और न जाने कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास भी नहीं हुआ। युग के आंसू कृषा की आंखों पर पड़े तो उसकी नींद खुल गई। कृषा हड़बड़ा कर उठी तो युग ने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर लीं। कृषा ने युग की तरफ देखकर हैरानी से कहा, क्या तुम रो रहे थे? अभी अभी तुम्हारे आंसू मेरी आंखों पर गिरे, तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। युग की लाल आंखों को देखकर कृषा को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो रो रहा होगा। उसका चेहरा भी लाल था। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं रो रहा था? वो मेरे आंसू नहीं, पानी था जो मैंने तुम्हें उठाने के लिए डाला था। युग एक ऐसा इंसान था जो आसानी से अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। उसने तुरंत ही खुद को नॉर्मल कर लिया था। कृषा एकटक युग की आंखों में देखने लगी। उसे युग की आंखों में कोई भाव नहीं नजर आया तो उसने धीरे से कहा, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। चलो अब बताओ क्यों जगाया? युग कृषा को जगाना नहीं चाहता था। अचानक उसके उठने पर युग ने बहाना बनाते हुए कहा, तुमने वहाँ डिनर ठीक से नहीं किया था। रास्ते में वो सब हो गया तो तुम्हें खाना खिलाने का मौका नहीं मिला। तुम्हें फीवर भी है, कुछ खाकर दवाई ले लो फिर सो जाना। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर इधर उधर देखा। उसने कन्फ्यूजन से युग के चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई खाना नज़र नहीं आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, मंगवा लेता हूँ, मुझे भी भूख लगी थी। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक कुछ ऑर्डर करता हूँ। युग जल्दी से कृषा के सामने से उठा और अपना मोबाइल लेकर बालकनी की तरफ चला गया। वो नहीं चाहता था कि कृषा उसकी आंखों में कोई इमोशन देखे। छाया को याद करने के बाद उसकी यादों से निकल पाना युग के लिए आसान नहीं था। युग ने तुरंत कॉल करके उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और फिर एक तक आसमान के सितारों की तरफ देख रहा था। बचपन में अक्सर छाया से उसने यही सुना था कि मरने के बाद हमारे अपने तारा बन जाते हैं। ये कहानी उसने तब सुनाई थी जब युग के नाना की डेथ हो गई थी और वो बहुत अपसेट था। अचानक ही युग को अपनी मॉम की सुनाई कहानी याद आ गई। वो आसमान में सबसे चमकते तारे को देखकर धीरे से बोला, आई स्टिल मिस यू मॉम, मैंने आपका प्रॉमिस निभाया और आपकी ग्रे आइज वाली लड़की से शादी भी कर ली। आप बिल्कुल ठीक कहती थीं, उसकी आंखों में देखने पर एक अपनापन महसूस होता है। युग सितारे को देखकर बातें कर रहा था। युग ने सिर्फ एक नॉर्मल शर्ट पहन रखा था और रात होने की वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के हाथ महसूस हुए। वो कृषा थी जिसने युग को अपनी बाहों में लिया था। कृषा की इस हरकत पर युग के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब तक वहीं उसके क्लोज आया करता था। कृषा ने युग के बैक पर सिर रखकर कहा, कम से कम इतना हक तो दे दो कि तुम्हारा दर्द बांट सकूं। बोलते हुए कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। इतने कम वक्त में भी युग से उसे बहुत इंटेंसिटी से प्यार हो गया था। युग का चेहरा दूसरी तरफ था। उसके इमोशंस कृषा देख नहीं पा रही थी लेकिन महसूस अच्छे से कर सकती थी। युग की आंखें बंद थीं और उसने बंद आंखों से कहा, मुझे कोई दर्द नहीं है और ना ही किसी की इतनी औकात है जो युग राणा को दर्द दे सके। अपनी बात कहकर युग ने आंखें खोली और अब उसकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस था जो डेविल की आंखों में होता है। युग कृषा की तरफ पलटा और उसे कमर से पकड़कर कहा, बाहर काफी ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। बोलते हुए युग उसे अंदर ले आया। कृषा ने चेंज कर लिया था। युग नहीं चाहता था कि कृषा अंदर जाकर फिर से वही टॉपिक शुरू कर दे, इसलिए उसने खुद से ही बात का टॉपिक बदलते हुए कहा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ, कृषा ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, मैं इतना कभी नहीं डरी रही थी जितना उस हमले से। मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब से सीन आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इसी तरह लोग गोलियां बरसा रहे थे और मैं गाड़ी के अंदर छुपकर बैठी थी। अचानक एक आंटी मेरे पास आई और वो मुझे कृषा युग को सब बता रही थी, लेकिन युग ने उसकी बात बीच में कहा, डेजा वो। वॉट? कृषा हैरानी से पूछा। एक ऐसा मेडिकल टर्म जहां हमें लगता है कि हमारे साथ चीजें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारे मन का वहम होता है। अब इन सब बातों को छोड़ो, मैंने मामू से बात की थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए, युग ने जवाब दिया। तभी उनके रूम की डोरबेल बजी, उनका खाना आ गया था। युग खाना लेने के लिए उठा और सर्विंग ट्रॉली के साथ वापस अंदर आ गया। उसने कृषा के चेहरे की तरफ देखा जो मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। कृषा ने बहुत आसानी से युग की बात का यकीन कर लिया था, जबकि युग अच्छे से जानता था कि कृषा जो कह रही थी वो सच था। जो औरत उसे बचाने के लिए गाड़ी में आई थी वो कोई और नहीं, छाया थी। खाना बिल्कुल सही टाइम पर आया था। ये अच्छा मौका था युग के पास जब वो आसानी से कृषा का ध्यान भटका सकता था। सर्विंग टोली पर रखा खाना देखने के बाद कृषा ने मुंह बनाकर युग की तरफ देखा और कहा, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाती, तुमने मुझे जगाया ही क्यों जब ऐसा खाना खिलाना था। सर्विंग ट्रॉली में वेजिटेबल सूप, ओट्स, फ्रूट्स और सैलेड रखा हुआ था। ये सब हेल्दी फूड था और जिसे देखने के बाद कृषा का मुंह बन गया। ऐसे मुंह मत बनाओ, इतनी रात को अनहेल्दी नहीं खाना, ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो आओ खाते हैं, युग ने कहा। वो अपने हाथों से कृषा को खिलाने लगा। कृषा को खाना खिलाते हुए युग उसकी तरफ देख रहा था। उसकी ग्रे आईज में देखते हुए उसे सच में एक अपनापन महसूस होता था। इतने सालों में युग ने जिस साथी की कमी महसूस की थी वो कृषा के रूप में उसे मिल चुका था, लेकिन कोई ऐसा था जो युग से कृषा को छीनना चाहता था। कृषा और छाया के चलते युग के दिमाग से तेज सिंह राणावत का ख्याल निकल चुका था। अचानक ही उसे सब याद आया तो उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। हम वापस कब जाने वाले हैं, कृषा ने पूछा तो युग का ध्यान टूटा। पहले तो मैंने सिर्फ दो दिन रुकने का सोचा था, लेकिन अब हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। कल मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलूंगा, तुम्हें अपने लिए जो भी लेना है ले लेना, युग ने जवाब दिया। वो अच्छे से जानता था लड़कियों को शॉपिंग कितनी अच्छी लगती है। ऊपर से मानव के कहे मुताबिक उसे कृषा का ध्यान इन सबसे भटकाना था। जहाँ शॉपिंग का नाम सुनकर बाकी लड़कियाँ एक्साइटेड हो जाती हैं, वहीं कृषा के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उसने अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, ज़रूरी है क्या शॉपिंग करना? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना शॉपिंग करना। तुम्हें शॉपिंग करना नहीं पसंद? युग ने हैरानी से कहा। कृषा ने जवाब में ना में सिर हिला दिया तो युग आगे बोला, ठीक है फिर हम वही करेंगे जिससे तुम्हें खुशी मिले। युग कृषा की खुशी के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर कृषा के दिल को वैसे ही राहत मिल चुकी थी। उनका खाना खत्म हो गया तो कृषा उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई।
कृषा ने युग की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइंड करते हुए कहा, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। ठीक है, फिर कल पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बेड पर रह सकता हूँ, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम्हें और बहुत कुछ करना होगा। आर यू श्योर कि तुम वो कर पाओगी? युग ने कृषा के बैक पर हाथ घुमाकर कहा। वो कृषा के बैक पर पैटर्न्स बना रहा था। कृषा ने युग की तरफ देखकर कहा, अभी नहीं युग, मुझसे नहीं होगा अभी। कृषा जिस तरह क्लियरली युग को अपने दिल की बात बता देती थी, उससे युग को कभी कभार बहुत हैरानी होती थी। ठीक है, चलो सो जाओ, अब और बातें नहीं करनी है, युग ने सख्त आवाज में कहा और फिर लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर में उन दोनों को नींद आ चुकी थी। जहां कृषा और युग सुकून से सो रहे थे, वहीं इस वक्त राणावत मेंशन में हड़बड़ी मची हुई थी। पिया राणावत के कहने पर तेज सिंह राणावत ने युग की गाड़ी पर हमला करवाया था। तेज सिंह राणावत का जैसा नाम था, उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल वैसे ही थी। वो लगभग 55 साल के आदमी थे जिन्होंने धोती और ऊपर कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते पर उनका खानदानी ब्रोच लगा हुआ था। सर के आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे और मुंह पर गहरी मूछों में वो किसी शाही खानदान के लग रहे थे। तेज सिंह राणावत ने अपने आदमियों को साफ समझाया था कि युग को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और कृषा किसी भी हाल में जिंदा नहीं रहनी चाहिए, पर यहाँ उन्हें कुछ और ही खबर सुनने को मिल रही थी। उसके सारे आदमी गायब थे, किसी का भी फोन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वो जो गाड़ियाँ लेकर गए थे वो भी लापता थीं। पिया ने गुस्से में तेज सिंह से कहा, ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, आपके आदमी कुछ भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल से बिजनेसमैन की वाइफ को नहीं मार पाए, ना जाने फिर हमें वो मौका कब मिलेगा। अरे वो तो लंदन में रहता है, अब क्या उसके पीछे लंदन चली जाऊं? पिया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अच्छा खासा मौका अपने हाथ से गवा दिया था। तेज सिंह राणावत ने सख्ती से उसकी तरफ देखा और जवाब में कहा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और आज तक तुमने जो भी मांगा है वो तुम्हें सब मिला है। न सिर्फ तुम मेरी इकलौती बेटी हो बल्कि इस खानदान में पूरी 3 पीढ़ियों के बाद तुम पहली लड़की हो, इसलिए तुम्हें इतने लाड़ प्यार से पाला गया है। ये तो तुम युग राणा की तरफ अपनी पसंद जाहिर की है, उसकी जगह यहाँ के राजघराने का राजकुमार भी होता तो तुम्हारे लिए ले आता। मेरे लिए मेरा राजकुमार वही है और आप उसे कैसे भी करके मेरे पास लेकर आएंगे। आई डोंट नो एनीथिंग पापा, मुझे उसी से शादी करनी है। पिया ने अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद तेज सिंह राणावत ने अपनी पत्नी मोहना राणावत की तरफ देखा, जो अब तक चुपचाप सारी बातें गौर से सुन रही थी। पिया के जाते ही मोहना ने कहा, वो तो बच्ची है और आप उसकी बातों में आ गए। अरे, एक शादीशुदा लड़के से शादी बेटी की करेंगे तो घर खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। आप भी उसकी बातों में आ गए, न जाने कौन है कैसे खानदान का है। तेज सिंह राणावत ने पहले ही युग राणा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। अचानक उनके फेस पर हल्की स्माइल आ गई, जिसे देखकर मोहना भी हैरान थी।